प्रातः क्लास चल रहा था 5/11/1966 शनिवार को 5वें पेज के मध्य में बात चल रही थी। बाबा जो बातें तुमको समझाते हैं कि त्रिमूर्ति के चित्र में पहले बाप का परिचय देना है, ये परिचय बुद्धि में चलता रहे। और ये परिचय जिसने दिया जो मुक्ति धाम में जाएंगे जब लड़ाई लगेगी तो मुक्ति धाम में जाएंगे, तो ये तुम ये बाबा समझाते रहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि में ये फिरता रहे, ये नॉलेज चलती रहे, काम करते उठते बैठते चलते सोते ये नॉलेज रहे कि मुझे समझाना है। अभी समझाएगा कोई नहीं, क्योंकि समझाए बिना धारणा तो होती नहीं है। न धारणा होती है तो समझा ही नहीं सकते हैं, तो वो बात ही नहीं हुई ना। ये ब्रह्मा भी तो सर्विस कर रहे हैं ना, तभी तो पद पाएगा ना। तो हरेक को बाप की तरह सर्विस करनी है। इसका मिसाल दिया, बाप का मिसाल दिया कि बाप की तरह सर्विस करनी है। कौन से बाप की तरफ है, कौन से बाप की तरह सर्विस करनी है, है? हाँ, जैसे मनुष्य सृष्टि का बाप सर्विस करता है, क्या सर्विस करता है, है? क्या बात समझाने का, मनुष्य से देवता बनने का तो समझाता है, लेकिन बनाने वाला कौन है? शिव बाप। डॉक्टर डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर इंजीनियर बनाता है, तो शिव बाप निराकार क्या बनाएगा, क्या बनाएगा? निराकार बनाएगा। शिव बाप निराकार क्या देगा, निराकारी वर्षा क्या होता है, भक्ति मार्ग में गाते आए हे पतित पावन आओ, आकर हम पतितों को पावन बनाओ। ये तो कोई ने नहीं कहा आकर ज्ञान सुनाओ। तो सर्विस कौन करते हैं? जो सर्विस करता है वो पाता है। सेवादारी को फल मिलता है या नहीं? तो कौन करता है? करता है या वो करता है? शिव बाप करता है या करता है? करता है। तो सर्विस कौन करता है? हाँ, वो निराकार जिसमें प्रवेश करता है मुकर्र रूप से, वो शिव बाप के द्वारा दिए हुए वर्षे को शिव बाप निराकारी तो वर्षा भी क्या है? निराकारी ज्ञान का वर्षा। उस ज्ञान के वर्षे को पूरा धारण करता है। और धारण करने का तरीका क्या है? है ज्ञान की धारणा कब होती है? ज्ञान की धारणा होती है मंथन करने से। जितना मंथन करेंगे उतना ज्ञान और विस्तार को पाता जाएगा। गहराई में जाएंगे तो पहले खुद मनन चिंतन मंथन करना है, फैसला करना है क्या राइट है क्या रंग। स्वर्ग का वर्षा देने वाला कौन है? सभी कहेंगे बाप ही वर्षा देने वाला होता है। तो बाप जो वर्षा देने वाला है उसके पास वर्षा होगा ना? बाप साकार में है तो वर्षा भी साकार में होगा। निराकार बाप का तो निराकार वर्षा ज्ञान, वो न किसी से कुछ देता है ज्ञान के अलावा और न किसी से कुछ लेता है। उस बाप के ज्ञान की त्रिकाल दर्शिता की जो कदर करता है वो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करके अपना बनाता है। प्रॉपर्टी कमाता है। ज्ञान धन की प्रॉपर्टी है ना? तो जो बाप प्रॉपर्टी कमाता है वही बाप अपने बच्चों को वर्षा दे सकता है। खुद प्रॉपर्टी वाला होगा तो वर्षा भी देगा, खुद नहीं होगा तो वर्षा भी नहीं देगा। तो बताया, पहले पहले तो सैम मूल बन के एक बाप को सर्विस करनी है, बाकी ऐसे तो नहीं है कि एक दो से कुछ विघ्न पड़ा या एक दो से नहीं बनी एक दो से कुछ झगड़ा हुआ तो शिव बाबा को याद करना ही भूल जाएगा, शिव बाबा की सर्विस करना ही भूल जाएगा। वो तो अपनी सत्यानाश कर लेंगे। कौन? जो आपस में लड़ झगड़ के स्वयं भी परेशान होते हैं और दूसरों को भी परेशान करते हैं। समझा ना? बस वही सर्विस होती रहेगी। सर्विस हुई या डिसर्विस हुई? बस कोई से दुश्मनी हुई, हम बाहर नहीं जाएंगे। बस देखो जयपुर में भी ऐसे हुआ ना, हद की जयपुर का मिसाल दिया, हद की बात का मिसाल दिया, झगड़े टंटे का मिसाल दिया। अब ब्राह्मणों की दुनिया में वास्तव में जयपुर कौन सा है? हैं? कहाँ है जयपुर? राजाओं के स्थान में, राजस्थान में। तो बताओ ब्राह्मणों की दुनिया में कितनी कुरियों के ब्राह्मण हैं? दुनिया में 9 आस्तिक धर्म है, 9 कुरी के ब्राह्मण हैं संगम में। तो उन 9 कुरियों में जन्म जन्मांतर राजा बनने की क्वालिटी कहाँ तैयार होती है? पहले पहले है, हर धर्म में मालाएं तो है ना, संगठन की यादगार मालाएं हैं। सूर्यवंशियों की भी माला है, चंद्रवंशियों की भी माला है, मुसलमानों की भी माला है, 100 मणकों की। जो सूर्यवंशियों की माला है 108 राजाओं की, उसमें 8 है मुख्य। जो आज से अंत तक असल सूर्यवंशी बनकर रहते, बाकी कितने बचे? 100। तो इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म में वो 8 नहीं है, तो हर धर्म में माला घुमाई जाती है, माला के मणकों को स्मरण किया जाता है। तो अव्वल नंबर माला कौन सी हुई है? सूर्यवंशी। तो सूर्य पहले पहले कहाँ उदय होगा है? सूर्यवंशियों में उदय होगा ना। तो सूर्यवंशियों की माला हुई रुद्रमाला, क्योंकि इस यज्ञ का नाम ही है रुद्र ज्ञानी यज्ञ। यज्ञ के आदि से ही ये नाम पड़ता है रुद्र ज्ञानी यज्ञ, शिव ज्ञानी यज्ञ नहीं। आत्माओं का बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा, कि शिव नाम मेरी बिंदी का ही नाम है और कोई की बिंदी आत्मा का नाम नहीं होता। और सबके इस नाम शरीर पर पड़ते हैं क्योंकि सभी आत्माएं शरीरधारी हैं, देहभान वाली हैं कि बिना देहभान वाली होती हैं। सभी आत्माएं देहभान वाली, देह का सुख भोगने वाली, भोक्ता। शिव बाप तो अभोक्ता क्योंकि उसको अपना शरीर है ही नहीं। तो जो शरीर नहीं है वो ज्ञान सूर्य जन्म मन के चक्र से न्यारा होने के कारण त्रिकालदर्शी है। सदा ज्ञान की रोशनी से भरपूर है और वो ज्ञान सूर्य जब इस सृष्टि पर आता है तो सूर्य की पालना में पलने वाले जो भी दिन के सितारे हैं उनके बीच ही तो आएगा पहले। तो उसका दूसरा नाम है, जब शरीर धारण करते हैं तब पड़ता है। जो बोला कि स्थापना के साथ साथ विनाश का भी फाउंडेशन पड़ गया, यज्ञ के आज में ही। कहां से पढ़ा है, कौन से ग्रुप से पढ़ा? वो ब्राह्मणों का कौन सा संगठन था? अरे अभी तो बताया, आपस में दुश्मनी होती है तो ज्ञान सूर्य बाप को ही छोड़ के चले जाते। मिसाल कहाँ का दिया? जयपुर का मिसाल दिया, जहाँ ज्ञान सूर्य जिस संगठन में पहले पहले उदय होता है। कौन सा संगठन है बाप? पहले पहले कौन से संगठन के बीच में आता है? अरे राम की सेना भूल गई है, बंदरों के संगठन के बीच में आता है। तो बंदर आपस में लड़ाई लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं? ऐसी लड़ाई लड़ते हैं कि वो आज भी है और वो लड़ाई सृष्टि का अंत भी हो जाता है। तो देखो जयपुर में भी ये हुआ, बस पक्का कर दिया हम अब उधर नहीं जाएंगे। लड़ते हैं आपस में और बाप की पढ़ाई छोड़ देते हैं। मना, उनके लिए पढ़ाई का कोई महत्व, पढ़ाई का महत्व नहीं है। काय का महत्व है? है काय का महत्व हुआ, लड़ाई का ज्यादा महत्व हुआ या पढ़ाई का ज्यादा महत्व हुआ? लड़ाई का ज्यादा महत्व हो गया। लड़ाई करते हैं आपस में और बाप को भी छोड़ जाते हैं। उनके वो जो ये बुलाया जाता है, फलाना किया जाता है, कुछ ऐसे ऐसे वहां होता है, हम वहां नहीं जाएंगे। अरे तुम शिव बाबा की सर्विस छोड़कर क्यों जाते हो? ये तो शिव बाबा की सर्विस है। शिव बाबा, उसके पास तुम नहीं जाएंगे तो वो तो तुम डिस सर्विस करते हो। किसके पास नहीं जाएंगे? अरे वर्षा किससे मिलता है? शिव बाबा से। शिव बाबा से काहे का वर्षा मिलता है? स्वर्ग का ज्ञान का। शिव बाबा से ज्ञान का वर्षा, ज्ञान का वर्षा मूल देने वाला शिव बाप है या शिव बाबा है? है मूल तो शिव बाबा, ज्ञान का वर्षा देने वाला नहीं है वो। साकार निराकार का मेल है वो, ज्ञान का अखूट भंडार नहीं है। कौन है? शिव बाप है अखूट भंडार। तो शिव बाप वो तो सिर्फ ज्ञान का वर्षा देता है और उस ज्ञान को जो जीवन में धारण करते हैं प्रैक्टिकली, जुगाली करते हैं, मंथन करते हैं, वो ज्ञान उनका हो जाता है। तो जो चीज उनकी हो जाती है वो दूसरों को भी दे सकते हैं। तो सबसे जास्ती मंथन कौन करता है? सागर मंथन का नाम तो बहुत बाला है। दिखाते हैं, सागर मंथन हुआ, असुरों ने भी किया और देवताओं ने भी मंथन किया। उस मंथन में सबसे जास्ती खींचातानी किसकी हो जाती है? है सबसे जास्ती खिंचाव किसके ऊपर पड़ता है? अरे वासुकी नाक के ऊपर है। एक तरफ से देवताएं खींचते हैं, दूसरी तरफ से असुर खींचते हैं। तो ज्यादा सर्विस किसकी हुई? है अरे वासुकी की ज्यादा सर्विस हुई ना। जो ज्यादा सर्विस होती है जिसे वासुकी कहा जाता है वो किसका पुत्र हुआ? है जैसे वासुदेव किसका पुत्र हुआ? वसुदेव का। एक मात्रा बच्चे के अर्थ में बढ़ जाती है। तो वासुकी किसका पुत्र हुआ? वसुदेव, वसु देव नहीं, वसु का पुत्र हुआ। वसु माने धन संपत्ति। धन संपत्ति का अखूट भंडार कौन हुआ? शिव। तो शिव का बच्चा वासुकी, शास्त्रों में उसे वासुदेव के रूप में भी कह दिया। वासुदेव भगवान का नाम दे दिया। ऐसे ही जाना जा सकता है कि वो वासुदेव जिसकी ओर सब तरफ से खींचतानी होती है। सब उसे अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। वास्तव में वो बाप जिसको सब आकर्षित करते हैं, भक्ति मार्ग में तो खास देखा जाता है कि कृष्ण को ही भगवान के रूप में मान लिया है, लेकिन कृष्ण तो बच्चा है ना, जिससे कृष्ण की पूजा होती है वो बच्चा कृष्ण किससे वर्षा लेता है, जो नारायण बनता है, हे कृष्ण नारायण वासुदेव। बच्चा वर्षा खुद पैदा करता है या बाप से लेता है? तो कोई बाप हुआ ना, जो वासुकी है वो उसी बाप से कनेक्टेड है। जो चित्रों में देखा जाता है जगत पिता के रूप में, जगतम पितरम वंदे पार्वती परमेश्वर को कहा जाता है, तो जगत पिता शंकरी वो रूप है जिसके गले में वो बच्चा लटका हुआ है, पड़ा हुआ है। कौन है? क्या नाम? वासुकी। वासुकी अपने बाप के गले में पड़ा है या किसी और के गले पड़ा है? बाप के गले में पड़ा है। तो जो वासुकी इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर है, पहला पहला वर्षा लेने वाला है। वो ब्राह्मणों की दुनिया में कौन हुआ? ब्रह्मा किशोर दादा लेखराज, और उसका बाप कौन हुआ है? जिसके गले पड़ा। तो बोला कि जो संगठन बनाने की सारी सर्विस है ये तो शिव बाबा की सर्विस है ना। उसके पास नहीं जाएंगे तो वो तो तुम डिसर्विस कर देते हो। जिसके पास अव्वल नंबर वर्षा लेने वाला जाता है उसके पास तुमको भी जाना पड़े ना, कि छोड़कर भागना है? आपस की लड़ाई में छोड़ के भागना है? बाप जानते हैं कि ये बच्चे इस बात के कारण वो सर्विस में नहीं लगते हैं जो सर्विस बाप करते हैं। तो ऐसा करने से आप अपना ही घात कर देते हैं, क्योंकि ये तो मनुष्य अपने बाप को भूल करके आप घात कर दिया। जो बच्चे बाप को भूल जाते तो वर्षे से भी वंचित तो हो जाते। अभी तो हीरे जैसा जन्म बनता है, फिर कोई जन्म में ऐसा जन्म नहीं बन सकेगा। अमर बनती है ना बच्ची, तो कभी भी कोई भी बात में किससे लून पानी होना और सर्विस छोड़ देना, इन जैसा बुरा कर्म तो और कोई दूसरा कर्म होता ही नहीं। डिसर्विस करते हैं या सर्विस करते हैं, जो आपस में लड़ाई लड़ते हैं और लड़कर छोड़ के भाग जाते हैं, तो डिसर्विस होती है या सर्विस होती है? डिसर्विस क्या होती है? लोग कहेंगे अभी तक तो ये कहते थे हम यहाँ जाते हैं हमें वहाँ बाप मिला है भगवान मिला है, अब ये छोड़ करके चले आए, इसका मतलब इनकी बुद्धि में बात सही नहीं बैठी थी। बाप भगवान वगैरह कुछ है, ऐसी बात है कि नहीं? तो डिसर्विस हुई ना, अपनी भी सत्यानाश, सर्विस भी नहीं करना और बाप की भी ग्लानी कराना। चुप करके बैठेगा और वो कुछ न कुछ ग्लानी जरूर करेगा, फलाना ऐसा है टीरा ऐसा है, ग्लानी करना और कराना। अरे ये तो तुम जिस सर्विस करते हो, तुम्हारा काम है बाप को याद करना। बाबा ने कहा है कि फलानी की गिल्ला करते रहो, भले करो लेकिन बाप को मत छोड़ो। तुम्हारा काम है निरंतर ये जो गिल्ला करते हो, वो भी टाइम अगर बाप को याद करो तो कमाई है, और वो जो ग्लानी करते हो वो मुंह में धूल पाते हो। ग्लानी करते हो जिसकी, तो देहधारी की ग्लानी करते हो या आत्माभिमानी की ग्लानी करते हो? देह मिट्टी धूल नहीं है तो क्या है? तुम्हारे मुंह में क्या आ गया? धूल आ गई, क्योंकि अभी तो ज्ञान है ना बच्ची। ये जो धुलिया और जो होली है ना, ये सभी क्या है? होली बनो, पवित्र बनो, और होली कहा जाता है होली, जो होना था सो हो गया, अब याद करो। दुलिया कहते हैं ज्ञान को, ज्ञान की दुलिया मचाओ, सबको ज्ञान की रिमझिम मचाओ। होली और दुरिया का अर्थ कोई और थोड़े ही है, नहीं, होली तो है अंग्रेजी अक्षर, दो अक्षर तो होते हैं ना, ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान है सच्चाई का ज्ञान, सत्य है एक ईश्वर, ईश्वर का ज्ञान सच्चाई, और विज्ञान है विशेष सच्चाई, जो प्रैक्टिकल करके दिखावे। ज्ञान अर्थात थ्योरी और विज्ञान प्रैक्टिकल, ये भी देखो इस दुनिया में बनाते रहते हैं ज्ञान विज्ञान भवन, ये कहां की यादगार है। संगम युग में बाप आते हैं तो ये बेहद का ज्ञान विज्ञान भवन खड़ा करते हैं। अभी जो चल रहा है कॉन्सेशन की बात 66 की, अभी जो चल रहा है वो तो सिर्फ नॉलेज है, ज्ञान है, अभी विज्ञान नहीं कहेंगे। तब जब तक बाबा के मुख से मुरली चलती रही तो उसे ज्ञान कहेंगे। एक मुरली में ऐसे भी बोला है, अभी ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि ज्ञान को प्रैक्टिकल रूप धारण नहीं कराया गया। मनन चिंतन मंथन करते हैं तो प्रैक्टिकल में ज्ञान अपना बन जाता है। तो अभी ये नॉलेज है, ये नॉलेज लेने वाले जानते तो कुछ भी नहीं है। क्या कहते हैं, हम हैं आत्मा, तुम हो आत्मा, आपस में भाई भाई गीत गाते हैं ना, हैं? जानते हैं अपनी आत्मा के पार्ट को, जानते हैं कि हमारी आत्मा किस ग्रुप विशेष में पार्ट बजाने वाली है 5-8 वर्ष की ड्रामा में। क्योंकि 9 कुरियों के ब्राह्मण हैं, 9 ही धर्म हैं दुनिया में, तो ऊंची कुली के कुरी के ब्राह्मण ऊंचे धर्म में जाएंगे और सबसे नीची कुरी के ब्राह्मण सबसे बाद में आने वाला जो धर्म है वहां जाएंगे, बीच वाले बीच में जाएंगे। माना कोई इस्लाम धर्म में जाएंगे, कोई क्रिश्चियन धर्म में जाएंगे, कोई बौद्ध धर्म में जाएंगे, कोई उनके सहयोगी धर्मों में जाएंगे। तो ये बात जानते हैं सब कि हम कौन से धर्म विशेष में कब कब क्या पार्ट बजाने वाले। हम आत्मा है, हम ज्योति बिंदु है, ये तो जाना, परंतु प्रैक्टिकली जाना कि हम किस ग्रुप की आत्मा है, कौन से संगठन की आत्मा है। विज्ञान तो ये कहा जाएगा कि योग में वी माने विशेष, ज्ञान माने ज्ञान, विशेष ज्ञान अर्थात जैसे गीता में कहा है ज्ञानात् ध्यानम विशेषते। क्या ये भी कहा नहीं ज्ञान सदसम पवित्रम ही विद्यते। क्या ज्ञान के समान दुनिया में कुछ भी पवित्र नहीं है। लेकिन फिर ये भी कहा क्या ज्ञान से याद विशेष है। क्यों? ज्ञान का प्रैक्टिकल रूप है याद। जो याद के स्टेज में स्थिर हो जाएगा संपूर्ण रूप से तो वो आत्मा ऐसे ही देखने में आवेगी कि अभी अभी बाप के घर से उतरी है। जैसे इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, चेहरा देखने से क्या लगता है, है? नया कार्य स्टेज दिखाई पड़ती है। तो योग युक्त होना माने वो निराकारी स्टेज पकड़ लेना जो बाप की स्टेज है, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। तो विज्ञान कहेंगे योग में, और ज्ञान सृष्टि के चक्कर को कहेंगे। 5/11/66 की वाणी का छठा पेज, अक्षर ही दो है, ज्ञान और विज्ञान, दूसरा कोई अक्षर है ही नहीं। तो होली और फिर होली के बाद धुरिया, अभी ये होली धुरिया क्या है? देखो कोई मनुष्य थोड़ी समझते हैं, होली तो यही है याद करना और ज्ञान का धूलिया मचाना, सबको ज्ञान सुनाना, सबको ज्ञान रंग के अबीर में रंगाई देना, तो कौन से वो चोली उनकी रंग जाएगी। ज्ञान से क्या होगा, उनका जो शरीर रूपी वस्त्र है वो भी ज्ञान में हो जाएगा, इंद्रियां भी ज्ञान से भरपूर हो जाएंगी। इंद्रियां जब ज्ञान से भरपूर हो जाती हैं, तो वो इंद्रियां किसी को दुख देंगी, दुख दे ही नहीं सकती। अज्ञान है तो अज्ञान युक्त इंद्रियां दूसरों को दुख दे सकती है। क्या अज्ञान, अज्ञान मैं देह हूं, ऐसा समझने से हिंसा पैदा होगी, और मैं आत्मा हूं, हिंसा खलास हो जाती है। तो आत्मा की चोली रंगनी है ना बच्ची, अभी तो आत्मा काली हुई पड़ी है। तो ये सभी जो भी बड़े बड़े दिन हैं, त्योहार, वो सब उल्टे सुलटे भक्ति मार्ग में चलते हैं, पर ये तो जैसे ड्रामा का खेल है, ये ऐसे फिर भी होगा। अभी दूसरी सब बातें छोड़ करके बाप बार बार समझाते रहते हैं बच्चे, क्या एक ही बात पहले समझो और फिर दूसरों को समझाओ, एक ही बात पर पहले पूरा मंथन करो, मनन चिंतन करो, और जब पक्का हो जाए तब दूसरों को समझाओ। क्या बात प्रदर्शनी में, क्या बात पहले समझानी है, है? बाप का परिचय, कौन से बाप का परिचय, लौकिक बाप भी होते हैं, वो तो ढेर के ढेर जन्मान जन्म जानांतर हुए, फिर बेहद का मनुष्य सृष्टि का बाप, आदम, एडम, आदिदेव कहा जाता है, फिर दूसरा बेहद का बाप, आत्माओं का बाप। तो कौन से बाप की बात है, जिस बाप के बारे में शिव बाप बार बार समझाते रहते हैं कि इसका परिचय दो, जिस बाप से तुमको स्वर्ग का बस्ता लेना है, स्वर्ग साकार तो बाप भी साकार होना चाहिए, बाप धनवान तो कौन सा वर्षा देगा? धन का ही वर्षा देगा। तो ऊंचे से ऊंचा भगवंत कौन हुआ? जन्म जन्मांतर के देह हरि बाप या आत्माओं का बाप या कोई और? आत्माओं का बाप, वो तो निराकार आत्माओं का बाप निराकारी वर्षा देता है ज्ञान का। स्वर्ग तो साकार है क्या? और स्वर्ग का वर्षा देने वाला स्वयं स्थिति में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? स्वर्ग का वर्षा देने वाला बाप सदा काल की स्वयं स्थिति में टिकने वाला हो तो हमें 100% स्वर्ग का वर्षा दे सकता है। खुद ही टिकने वाला नहीं होगा तो वर्षा दे सकेगा है? तो पूछा, कई दिन से ये वाणी चल रही है त्रिमूर्ति के ऊपर कि त्रिमूर्ति के चित्र में पहले पहले समझाओ कि ऊंचे से ऊंचा भगवंत कौन है। ये बात बार बार समझाती रहती है बच्चों को, ऊंचे से ऊंचा भगवान वो फादर है, क्रिएटर है, रचयिता है, ये भी इशारा दे दिया। साकार है या निराकार? खुद को सर्वव्यापी नहीं कह सकते हैं, सर्वव्यापी बाप कैसे होगा? सर्वव्यापी से वर्षा कैसे मिलेगा? तो बताओ वो बाप एक व्यापी कहा जाए या सर्वव्यापी कहा जाए? वो बाप आते हैं कहां से? ऊंचे से ऊंचे धाम से आते हैं, आए करके उन बाप को याद करते हैं। क्या ऊंचे से ऊंचा बाप परम धाम से आते हैं, आत्माओं के लोक से आते हैं, निराकारी धाम से आते हैं, तो आकर के पहले किसको याद करते हैं? है शिव बाप को याद करते हैं, उन बाप को याद करते हैं, इन ब्रह्मा को नहीं। वो बाप पहले पहले जब आते हैं तो इन ब्रह्मा को याद नहीं करते, उन बाप को याद करते हैं। दूर क्यों कर दिया उन कह के? है बाद में वो पार्ट प्रत्यक्ष होने वाला है बच्चों के सामने। सभी मनुष्य उन बाप को ओ गॉड फादर, ओ गॉड फादर ये कहकर के याद करते हैं ना, है? तो प्रैक्टिकल में है, हुआ है या नहीं हुआ है? है हुआ है। अगर खुद भी सर्वव्यापी है तो खुद किसको खुदा याद करते हैं? सर्वव्यापी है तो सब खुद हो गए, खुदा हो गए। खुदा तो खुद ही आता है ना, तो सर्वव्यापी है तो क्या हो गए, खुदा हो गए। बताओ, सब सर्वव्यापी हो सकते हैं क्या, खुद आते हैं क्या, कि माँ बाप पैदा करते हैं है? अरे माँ बाप पैदा करते हैं, खुद खुदा को याद क्या करेंगे, खुद ही खुदा हैं तो कौन से खुदा को याद करेंगे। ये जो याद करते हैं सो भी अभी की बात है क्या, जिसको याद करते हैं क्या याद करते हैं, अभी की बात क्या है, सतयुग की बात नहीं है, त्रेता की बात नहीं, द्वापर की भी बात नहीं। द्वापर के आदि में भी वेद लिखे गए, उन वेदों की ऋचाओं में भी ये ऋचा है कि हे भगवान, हम तुम्हें पहले सर्वव्यापी नहीं मानते थे, अब सर्वव्यापी मानते हैं। पहले मुसलमान भी कहते थे खुदा अर्श में रहता है, फर्श में नहीं रहता है, अब वो मुसलमान भी क्या कहने लगे, जर्रे जर्रे में खुदा है। तो अभी की बात है, जो सर्वव्यापी को याद करते हैं कैसे, इस बात को समझने के लिए ये पहले समझना है कि त्रिमूर्ति में वो कौन सी मूर्ति है जो खुदा है, वो कौन सी मूर्ति है जो सब बच्चों को नंबरवार बरसा देती है सुख शांति का, वो कौन सी मूर्ति है, साकार है या निराकार, साकार है। अगर साकार है और वो कहे माँ मैं एकम याद करो तो ये ठीक बात है, है? साकार देह भानी होता है या नहीं होता है, है? साकार है तो देवान वाला होगा, भले सृष्टि का पहला पत्ता देवता क्यों न हो, कृष्ण सो नारायण, उसमें भी देवान है आंखों में, राधा की कृष्ण, राधा की दृष्टि कृष्ण में, कृष्ण की दृष्टि राधा में डूबती है, तो आंख भी देह का अंग है या नहीं, देह भी वो आंख भी देह का अंग है तो देहभानी हुआ ना। देवांग से ही सृष्टि पैदा हुई ना, तो देवानी है तो साकारी है, साकारी है तो पहले ही जन्म से नीचे गिरने वाला है या ऊपर उठने वाला है, है? पहले ही जन्म से कलाएं कम हो जाती हैं कि नहीं, तो वो जो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है वो साकारी है या निराकारी, मुरली में तो बोला है न साकारी को याद करना है न निराकारी को याद करना है न आकारी को याद करना है, तो याद किसको करना है, साकार में निराकार को याद कर। तो कौन है त्रिमूर्ति में वो साकार सो निराकार है? शंकर जो याद में बैठा हुआ है। अरे याद में जो बैठा हुआ है वो पुरुषार्थी है या संपन्न है? वाह, शंकर पुरुषार्थी है या पुरुषार्थ कराने वाला है? हैं? पुरुषार्थी है तो कराने वाला ऊंचा हुआ ना, वो कौन? अगर शंकर ही ऊंचे ऊंचे भगवंत तो होता तो शास्त्रों में ये क्यों कह दिया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम ब्रह्म को क्यों नमन करते हैं? शंकर को नमन करते करते हैं नहीं? फिर बताओ, शिव के मंदिरों में भी शिवलिंग बीच में दिखाते हैं मुखिया के बतौर, और चारों ओर देवताओं की मूर्तियां रखी हुई। उन देवी देवताओं की मूर्तियों के मुख्य स्थान पर शंकर की मूर्ति रखी है। तो शंकर भी किसको याद कर रहा है? है? शिवलिंग को याद कर रहा है ना, मुखिया को। जैसे और देवताएं आसपास बैठे हुए, तो पूछा कि त्रिमूर्ति के चित्र में पहले उसे चित्र का परिचय दो जो साकारी भी है और निराकारी भी है। वो कहते हैं मुझे निरंतर याद करो। कौन कहते हैं मुझे निरंतर याद करो? शिव बाप कहते हैं। दादा लेकर आदि ब्रह्मा कहते हैं या शंकर कहते हैं? शिव बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो। बाप कहते हैं मन मना भव, मेरे मन में समझा। शिव बाप को मन है? है, फिर कैसे कहेंगे मेरे मन में समझा? तो कौन कहते हैं? शिव बाप तो अमन है, वो क्यों कहेगा मेरे मन में समझा? अभी तो बताया वो बाप आकर के उन बाप को याद करते हैं, वो बाप आकर के उन बाप को याद करते हैं, उन कहकर किसको किसको इशारा किया है? भविष्य में आने वाले को बताया ना कि उनको याद करते हैं, माना जो ऊपर वाला परम धाम वासी आत्माओं के लोक से आता है, आत्माओं का बाप, वो आकर के किसका आधार लेता है? है? कोई का आधार लेता है। जिसका आधार लेता है तो वो आशिक हुआ या मासूक हुआ? मासूक हुआ ना। और जो ऊपर से उतर के आया वो कौन हुआ? आशिक हुआ। तो वो बाप कहते हैं मैं भी उसका आशिक हूँ और तुम बच्चे भी उसके आशिक हो। वो क्या है? वो सबका माशूक है। वो कहता है मेरा भी माशूक है और तुम बच्चों का भी माशूक है। तो वो है ऊंचे से ऊंचा भगवान। बताओ त्रिमूर्ति में कौन है?
कौन बिंदु है? शिव का यादगार।
माने लिंग साकार की यादगार और जो बिंदु वो निराकार की यादगार। बाप कहते हैं तुम मुझे जितना याद करते हो मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम्हारे में भी तो वो बिंदु है, वो बिंदु तुम उसको याद करते हो तो तुम्हारे में नहीं है, है? तो तुम भी ऊंचे थे ऊंचे भगवंत हो गए। अरे है? कौन? हम लोग जन्म मरण के चक्र में आते हैं। आज निश्चय बुद्धि बने, बाप का जन्म लिया घर में और कल अनिश्चय बुद्धि बन गए, मृत्यु हो गई। तो अभी हम मृत्यु लोक में है, फिर अमर लोक में कब होंगे? क्या हम अभी अमरनाथ बाप के बच्चे नहीं बने हैं? हैं? बन रहे हैं। मैंने पैदा हुए कि नहीं हुए? पैदा हो गए। जब पैदा हो गए बाप का बच्चा बन गए, बाप के घर में जन्म ले लिया, क्योंकि कोई भी आत्मा आती है तो जन्म लेने से पहले माँ के पेट में बाप के घर में आकर प्रवेश करती है। बाप के घर का बच्चा बनना पड़े ना पहले, तो बच्चा बन गए, बाप को पहचान लिया। कौन है वो बाप? अरे निराकार साकार का मेल है। माना शंकर में जो तीसरा नेत्र दिखाया जाता है भक्ति मार्ग में, सदाशिव तीसरा नेत्र दिखाते हैं ना, खड़ा हुआ सदैव पुरुषार्थ में खड़ा हुआ, दिन में भी पुरुषार्थ में खड़ा हुआ और रात में भी दिन रात की सेवा है। कि रात को सेवा करना बंद कर देता है, दिन रात सेवा करता है ना। तो बताओ वो स्वरूप कौन है? शंकर को तो आजकल चित्रों में भी दिखाया जाता है, पट्ट पड़ा हुआ है छोटे बच्चे के रूप में। तो पड़ा हुआ है या खड़ा हुआ है? हैं? पड़ा हुआ है, खड़ा हुआ नहीं कहेंगे। तो वो कौन है? ठीक है, नारायण अभी तो कोई नहीं बना है। कि बना है कोई? ये पहचान लिया नहीं ना, नहीं पहचाना तभी तो आज निश्चय बुद्धि और कल अनिश्चय बुद्धि होते रहते। सबका यही हाल है, मृत्यु लोक में है, जन्म मरण के चक्र में आते हैं या अमर लोक में आ गए हैं, कहां मृत्यु लोक में है। भले कहें संगम युग में, तो संगम युग में भी कलयुगी हिस्से में है या सतयुगी हिस्से में है, कलयुगी हिस्से में क्यों है कि जो भी 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, उन मनुष्य आत्माओं के बीच जो मनुष्यों का पिता है वो भी जन्म मरण के चक्र में है। सदाकाल स्थाई याद नहीं है, सदाकाल स्थाई याद होगी तो शंकर बैल पर सवार हो जाएगा या बैल शंकर पर सवार होगा। अभी क्या है, बैल शंकर पर सवार हो जाता है। तो बैल क्या करता है, बैल बैलबाजी करता है। बैल आकल तो चलाता नहीं, क्या काम करना है क्या नहीं करना है, किससे फायदा है किससे फायदा नहीं है, ये बैल बुद्धि चलाएगा है। और ब्राह्मणों की दुनिया में बैल कौन है, है ब्रह्मा बाबा। तो वो ब्रह्मा बाबा शंकर पर सवार है या शंकर ब्रह्मा पर सवार है। ब्रह्मा बाबा माना वासुकी है, वासुकी ने गले से पकड़ रखा है, गला जकड़ लिया है। एक सांप होता है बहुत मोटा वाला, पड़ा रहता है, जैसे कोई शिकारी आया मुंह में दे लेता है, दबोच लेता है। कोई बड़ा जानवर आएगा तो चारों तरफ से उसको ऐसा जकड़ेगा कि जहां का तहां मर जाएगा। तो गले से पकड़ रखा है, शेर क्या करता है, शेर किसी जानवर को पकड़ता है तो कौन से हिस्से से पकड़ता है, गले से पकड़ता है। यहां दो शेर हैं, एक है बबर शेर और एक है टाइगर। भारत में मान्यता किसकी है, टाइगर की मान्यता है। बबर शेर ताकत में ज्यादा होता है, फिर भी टाइगर की मान्यता क्यों है, है हाँ। अकल बड़ी या भैंस, क्या कहा जाए है, अकल बड़ी बुद्धि बड़ी या हाथी, अकल बड़ी। तो दोनों प्राणियों के बीच टाइगर और लाइन, ताकतवर तो लाइन है, आमने सामने का मुकाबला होगा तो शेर ही जीतेगा, लेकिन टाइगर चालाक, वो सामने से बार नहीं करता, जब मौका देखेगा तब ही बार कर देगा और विजयी हो जाता है। तो ऐसे ही है शंकर और बैल ब्रह्मा, किसने गला पकड़ रखा है? दो तरह की देवी दिखाई जाती है, एक देवी सिंहवाहिनी और दूसरी देवी बाघवाहिनी, बाघम्बरी। कौन कौन हुई? जगदम्बा बाघम्बरी और पार्वती या लक्ष्मी है सिंहवाहिनी। तो बताओ, शेर ने, उस ह्यूमन शेर ने, जो ह्यूमन जंगल का राजा था, प्रतिकूल शरीर से था, अभी सूक्ष्म शरीरधारी है, तो ज्यादा पावरफुल है या कम पावरफुल है? ज्यादा पावरफुल है। तो उसने क्या किया? जो कम पावरफुल शेर है, जिसे टाइगर कहा जाता है, उसको गले से दबोच रखा है। इसलिए शास्त्रों में शंकर के गले में वासुकी दिखाया जाता है। तो गला दबोच के खलास कर देगा या बचेगा? है कैसे? शंकर बाप के असली स्वरूप को जानता है और वासुकी तो जानवर है। जानवर बुद्धि बाप को पहले पहचानेगी या मानवीय बुद्धि पहचानेगी? तो जो बाप को जानता है वो बाप की याद में है, और जब तक याद में है तब तक उसको कोई मार ही नहीं सकता। कितना भी कोई बड़ा राक्षस बुद्धि हो, जानवर बुद्धि हो, तो बाप कहते हैं बच्चे अंत में तुम्हारी जीत जरूर होनी है। पुरुषार्थ करते करते एक क्षण ऐसा जरूर आएगा कि जिसमें शंकर बैल पर सवार हो जाएगा। कैसे सवार हो जाएगा वो भी तरीका बताया है, है? छलांग लगा के बैल पर सवार हुआ जाता है ना, तो इशारा दे दिया। जब तुम बच्चे हाई जंप लगाएंगे तो बैल पर सवार हो जाएंगे। तो बताया अभी मुझे याद करो। क्या न उसे निराकार को याद करो जिसको और धर्म वाले याद करते हैं, धर्म पिता याद करते हैं, ब्रह्मा याद करता है, ब्रह्मा कुमारियां याद करती हैं, उसको ना याद करो। किसको याद करो? है मुझे याद करो। कौन कहता है? वो ही कहता है जो मंदिरों में, सारे संसार के सार्वभौम मंदिरों में जिसकी सबसे जास्ती लिंग मूर्तियां मिली हैं, वो लिंग मूर्ति अभी भी कहता है मुझे याद करो। उस साकार लिंग में निराकार ज्योति बिंदु को याद करो, जिसे तुम 2500 वर्ष पूजते रहे, इसको पूजते रहे। वो तो कहता है न मैं पूजी बनता हूँ न मैं पुजारी बनता हूँ। कौन? शिव कहता है मेरी बिंदी का ही नाम शिव है। वो नहीं कहता है तो क्या पत्थर का लिंग साकार कहता है? पत्थर बुद्धि है? नहीं, वो पत्थर बुद्धि भी शिव को अपने अंदर याद करते 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 ऐसी स्टेज पाता है जैसी शिव की स्टेज हो जाती। तब की बात है, मुझे संपन्न रूप को याद करो, अधूरे को याद न करो। अधूरे को याद करेंगे तो क्या नुकसान? है? अधूरे को याद करेंगे तो जो कहा जाता है नीम अकीमे खतरे जान, कदम कदम पर खतरा है, ऐसा जीवन बन जाएगा। क्या? तो किसे याद करो? संपूर्ण को याद करो। जिस पत्थर बुद्धि में, जिस पत्थर के लिंग में, भक्ति मार्ग में, खास कलयुग के अंत में पत्थर में हीरा दिखाया गया सोमनाथ के मंदिर में, और वो हीरा भी किसकी यादगार? नहीं, चैतन्य हीरा नहीं कहने वाला है, वो शिव। हीरा पत्थर होता है या नहीं होता है? हीरा भी पत्थर होता है। तो वो हीरा कौन है जो कलयुग के अंत में पत्थर बुद्धि भी बनता है और आज में षष्ठी का हीरो पार्टधारी भी साबित हो जाता है सारे संसार के सामने? वो कौन है? वो ही परम ब्रह्म जिसको शिव के मंदिरों में लिंग के रूप में दिखाया गया है। लिंग बड़ा रूप है और बिंदु निराकारी रूप है, दोनों का मेल है। जैसे हम सब साकारी भी है और निराकारी आत्मा भी है, परंतु हम सब पार्टधारियों के बीच, 500-700 करोड़ मनुष्यों के बीच हीरो पार्टधारी कौन है? एक होगा या दो चार होंगे? एक है। वो पहचान करनी है और दूसरों को पहचान देनी है। पहले खुद समझना है फिर दूसरों को समझाना। ऊंचे से ऊंचा भगवंत कौन है जो कहते हैं निरंतर मुझे याद करो? याद क्यों नहीं करते हैं? भक्ति मार्ग में भी याद जरूर करते हैं पर वो बेचारे जानते नहीं है बाबा को। याद तो करते हैं, जानकर याद करते हैं कि बिना जाने याद करते हैं? है? ब्रह्मा कुमार कुमारी भी क्या करते हैं? बिना जाने याद करते हैं। जानकर तो याद करते नहीं क्योंकि जानते ही नहीं कौन है। वो ही सृष्टि पर हीरो पार्टधारी प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला है या नहीं है? है तो, परंतु उसका परिचय न खुद है और न दूसरों को दे पाते। तो पूछा, याद क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो रचयिता को जानते ही नहीं है कि इस मनुष्य सृष्टि का रचयिता कौन है। जो झाड़ के ऊपर बैठा हुआ दिखाया गया, जिसमें सारी मनुष्य आत्माएं अपना चोला छोड़ छोड़ करके आत्मिक रूप में प्रवेश करती जा रही है, जिसकी याद में जो कहता है माम एकम याद करो, मत मना बाबा मेरे मन में समा जाओ, वो कहने वाला साकार सो निराकार दोनों है या एक है? दोनों है, नहीं तो कहेगा कैसे? मुख होगा तब तो कहेगा। तो वो साकार भी है लिंग रूप में, और वो लिंग निराकार भी है, क्योंकि उसमें नाक आंख कान हाथ पांव दिखाई नहीं देते। दिखाई देते हैं तो निराकार हुआ ना, इंद्रियां जैसे है ही नहीं। तो भक्ति मार्ग में कह दिया है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बन जोगी। अरे लोग चक्कर में पड़ जाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता कि आंखें हैं तो भी देखता नहीं, मुख है तो भी जैसे बोलते हुए नहीं बोलता, कान है तो भी जैसे सुनते हुए भी नहीं सुनता। कान है, सारी दुनिया उसकी ग्लानी करती है, परंतु ग्लानी को कानों से सुनते हुए भी नहीं सुनता, धड़ाधड़ अपना काम करता चला जाता है। नहीं तो क्या होता है, कोई की ग्लानी होती है तो ग्लानी से हड़बड़ा जाते हैं कि नहीं, बौखला जाते हैं कि नहीं? है बौखलाना, परेशान होना, ये देवान से होता है या बिना देवान के? उसमें देवान है, रोत रहता ही नहीं। निराकार बाप को याद करते करते ऐसी पुरुषार्थ करके स्टेज बना लेता है कि आत्मिक स्थिति में रहने से कोई प्रकार का देवान आता ही नहीं। कानों से सुनते हुए नहीं सुनना, आंखों से देखते हुए भी नहीं देखना, ऐसी इंद्रियों की स्टेज हो जाती है। तब उसे कहा जाता है निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, इसके समान बाप। तो कोई जानती नहीं, तो फिर क्या करेंगे? जानते ही नहीं है तो मिलेगा तो क्या मिलेगा? जिसको जानते ही नहीं है किस बाप को, उसे क्या भरोसा मिलेगा? न जानने के कारण उसको सर्व व्याधि कर दी। बाकी जो उनमें ऊंचे थे ऊंचा भगवान, उनका जो बुद्धि में सर्व व्याधि की बात होना वो निकल जाती कि वो ऊंचे थे ऊंचा भगवान थे।
इनकी भक्ति मार्ग में पंचम के अंत में कहते हैं सड़ जाती है। कैसे सड़ जाती है? उस अव्यक्त मूर्ति के द्वारा सारा संसार व्याप्त है। जैसे बीज से सारा वृक्ष भरा हुआ है, सारे वृक्ष में बीज समाया हुआ है, बीज कहता है न हम तेजु ते मैं, क्या मैं उनमें नहीं हूँ, पत्तों में, टहनियों में, वृक्ष में, तनों में, फल में, फूल में मैं नहीं हूँ, लेकिन वो सब मेरे में है। वो रूप है शिव के मंदिर में रखा हुआ शिवलिंग, जो निराकार भी है क्योंकि दुनिया देखने में नहीं आती है, जो दुनिया है लेकिन बाप की याद में रहने से वो इंद्रिया अपना फल नहीं होगी, इसलिए निराकार। बात समझानी है, भक्ति मार्ग में जो कहते आए हैं सब व्यापी है, ये बात समझनी है कि भक्ति मार्ग में जब कहते हैं ब्राह्म ब्राह्मण में कहते हैं तो उस ब्राह्म ब्राह्मण की छोटी कहा होती है, तो संगम में कौन कहते हैं सब व्यापी है और कैसे कहते हैं सब जाती है? समझते नहीं है कि जैसे बीज सारे वृक्ष में व्यापक है, ऐसे ही मनुष्य शक्ति का बाप सारी मनुष्य शक्ति का बीज सारे मनुष्य शक्ति की वृक्ष में व्यापक है। इसलिए गीता ने कहा है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्यापाद कर्म, मैं जो कर्म करता हूँ जिस रास्ते पर चलता हूँ मेरे रास्ते पर सब मनुष्य चलते हैं। इस प्रति अच्छा कर्म करने में भी और बुरा कर्म करने में भी मेरे को फॉलो करते हैं। तो बताओ अच्छा कर्म करने में कब, जब तक अधूरा पुरुषार्थी है, और जब संपन्न पुरुषार्थी बन जाता है अच्छे कर्मों में कब होते। तो निवास समझानी चाहिए सर्वव्यापी क्यों कहते हैं, उनका अर्थ क्या है? क्योंकि जो वृक्ष के ऊपर बैठा हुआ है उसी में सब आत्माएं ज्ञान में प्रवेश कर जाती है। तो उसका आदेश है मन मना भव, मेरे मन में समा जा, तो उसके मन में क्या समाया हुआ है? उस साकार के मन में क्या समाया हुआ है? ज्योति बिंदु। क्या समाया हुआ है? ज्योति बिंदु। तो सभी आत्माएं आखिरी अंत में क्या पोशाक करती है? इसी ज्योति बिंदु स्वरूप में समा जाती है और ज्योति बिंदु को याद करती है, याद करते करते उसी में महामृत्यु के समय, प्रलय काल के समय प्रलीयन्ते सभी मनुष्य आत्माएं अथवा प्राणी उसी में समा जाती है और नई सृष्टि के आरंभ में उसी से निकलना शुरू करती है। हम सब आत्माएं समंदर के बुलबुले जैसे समंदर में से बनबुला निकलता है और समंदर में ही समा जाता है, ऐसे हम सब आत्माएं क्या हैं? उसी ज्ञान सागर के बुलबुले हैं और उसी में समा जाता है। कोई छोटे हैं, कोई बड़े हैं, एक जैसे तो कोई नहीं, कोई बड़ा बुलबुला है, कोई छोटा बुलबुला है, छोटा बुदबुदा है तो कमा आवाज करेगा, बड़ा बुदबुदा है तो बड़ा बुदबुदा आवाज करेगा। तो पात्र है, कोई छोटा पात्र है, कोई बड़ा पात्र, सबका अपना अपना अलग अलग पात्र है। सब आप किया एक से ही निकलते हैं और एक में ही समझ तो कहा जाता है आत्मा सो परमात्मा। तो क्या बुद्धे आत्मा सो परमात्मा है? नहीं, वो बुद्धे जिसमें समा जाते हैं महामृत्यु के समय, जिसमें समा जाते हैं वो आत्मा है क्या? परमात्मा। साधन कहा जाता है हमको और हम सभी है ब्रदर, वर्षा किससे मिलेगा? बाप से वर्षा मिलेगा, ब्रदर से ब्रदर को वर्षा मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो ये जो ब्रह्म है, ब्रह्मा कुमारियों का, इस्लामियों का ब्रह्म है, बौद्धियों का बुद्ध है, क्रिश्चियंस का क्राइस्ट धर्म पिता है, तो उन सबको क्या उन धर्म पिताओं से सुख शांति का वर्षा मिलता है? है? वो धर्म पिताएं आपस में ब्रदर्स हैं, या पिता है ब्रदर्स है, सबका कोई एक बाप है, धर्म पिताओं का भी बाप, बापों का बाप कौन? नहीं, धर्म पिताएं देह अभिमानी है, देह अभिमानी मनुष्यों का बाप कौन है? प्रजा पिता का, सारी प्रजा 500 करोड़ का बाप, वो धर्म पिताओं का भी बाप है। और उसका कोई बाप है या नहीं? जो धर्म पिताओं का भी बाप है उसका भी बाप है, शिव बाप, परम पिता, प्रजा पिता परम पिता नहीं है, है? सबसे ऊंचा बाप नहीं है, लेकिन सारी मनुष्य शक्ति का बाप। उस मनुष्य शक्ति में कोई भी ब्रदर हो, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ही क्यों हो, उनको भी वर्षा किससे मिलता है? है? साकार सो निराकार बाप से मिलता है, जो साकार भी है इस शक्ति पर। और संगम युग में निराकार ही बन जाए, बाप समान बन जाता है। तो हम सभी बदलते हैं, सभी आदरण प्रदर्शकों को बता देते हैं। दुनिया में ऐसे होता है ना, जो भी बाप हुई है 84 जन्मों में, वो अपने अपने बच्चों को वर्षा देते हैं ना। तो यहाँ भी ये दो बेहद की बात, एक बेहद का बाप है आत्माओं का बाप, निराकार आत्माओं का बाप निराकार वर्षा देता है, और साकार मनुष्यों का बाप साकार मनुष्यों को साकारी वर्षा देता है। नारायण को भी सुधरा हुआ साकार मनुष्य कहेंगे ना, नहीं है? तो भी वर्षा देने वाला कौन, जो डायरेक्ट नरसिंह, जिस नर को नारायण बनाने वाला कोई भी साकार शक्ति पर नहीं, वो सबका बाप, सारी मनुष्य शक्ति का बाप, वो सब मनुष्य आत्माओं को, सब मनुष्य मात्र को, सब चरम पिताओं को वर्षा देता है। कहीं का वर्षा देता है सुख और शांति का वर्षा। हर 5000 वर्ष देखो सतयुग में तो रहते हैं देवी देवताएं, बाकी सभी कहां रहते हैं? परम नाम में रहते हैं, मुक्ति नाम में, शांति नाम में रहते हैं, क्यों रहते हैं? नारायण शक्ति के याद से ही शांति धाम में नहीं रहता है, सुखधाम में आ जाता है। बाकी सभी आत्माएं जो देव आत्माएं नहीं बनती है, वो पर नाम में मुक्ति धाम में क्यों रहती है? वो निराकार को याद करती है लंबे समय तक, तो लंबे समय तक उन्हें निराकारी धाम की शांति मिलती है, बाद में जाकर के पहचानेंगे जब मौत सामने खड़ा होगा, तब उस साकार को निराकार को पहचानेंगे। तो उनको एक जन्म का मुक्ति का वर्षा फिर भी माने 500 करोड़ आत्माएं, 700 करोड़ आत्माएं जो भी है, अंत समय में महामृत्यु के समय में सब उस साकारी निराकारी बाप को पहचानेंगी, और पहचान करके उससे अपना भरसा जीवन मुक्ति का लेंगी। जो खुद जीवन मुक्त होगा वो दूसरों को देगा जीवन मुक्ति का भरसा, खुद ही जीवन मुक्त नहीं होगा तो दूसरों को कैसे देगा? तो निराकारी बाप जीवन मुक्ति का भरसा लेता है, वो जीवन मुक्त है उसको अपने शरीर, जो जीवन मुक्त है इस शक्ति पर सदा का, आज भी जीवन मुक्त है, कल भी जीवन मुक्त भविष्य में रहेगा, और पास्ट में भी जीवन मुक्त था, कोई के अंदर भी कंट्रोल आने वाला नहीं। दुनिया के कितने भी बड़े से बड़े विश्व की बादशाही के महत्वाकांक्षी हिटलर, नेपोलियन, मुसोलिनी भारत पर आक्रांताएं बनकर के आए, परंतु उससे जीत नहीं सके, मुंह ही खा करके वापस गए। क्या क्या साबित हुआ है? उसकी टक्कर कोई से हो ही नहीं सकती, बच्चे कैसे बाप से टक्कर लगे? तो बोला वो बाप है, हर 5,00,000 वर्ष के पोषक में तो रहते हैं देवी देवताएं, बाकी सब मुक्ति धाम शांति धाम, अभी तो इनहेरिटेंस कौन देते हैं? किससे मिलता है? प्रजापिता तो पति से क्या देगा? प्रजापिता पति का नाम है या पावन का नाम है? पति का नाम है, परम ब्रह्म पत्य को नहीं कहा जाता, वो शिवलिंग जिसकी पूजा होती है सार्वभौम पूजा है, दुनिया की सारी बड़ी बड़ी चुगाइयों में वो लिंग मूर्तियां ज्यादा से ज्यादा तादाद में पाई गई है, वो शिवलिंग सबका पूज्य है, जाने या न जाने, पूजे या न पूजे, लेकिन जाने अनजाने में वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत है। हम सभी बदल वो ही आकर के हमको वर्षा देते हैं, इनहेरिटेंस देते हैं और हमको भी सिखला रहे हैं। क्या है? क्या सिखला रहे हैं? राजयोग सिखला रहे हैं, जो बाप की राजाई का वर्षा है, वो राजाई का वर्षा उसे एक बाप ऊंचे से ऊंचे भगवंत के बगैर कोई देख नहीं। वो निराकारी वर्षा नहीं देता है, पैसा वर्षा देता है, है? साकार मनुष्य तन में वर्षा देता है, यह निराकार आत्मा को शांति दान का वर्षा मिलता है, साकार मनुष्य तन में वर्षा देता है। अब कोई भी धर्म वाला हो उसको हम बोलते हैं उस बाप को याद, जो कहते हैं मन मना भव, बताओ कौन कहते हैं मन मना भव? मेरे मन में समझ आ, जो कहते हैं उसके मन में क्या समाया हुआ है? जो कहते हैं मन मना भव है क्या समाया हुआ है? जो तो समाया हुआ, तो जो कहते हैं मेरे मन में समा जा, तो उसके मन में समाने का मतलब है कि जैसा वो है वैसे हम भी बन जाए, देवान को त्याग दें और क्या बन जाए? ज्योति बिंदु बन जाए, और ज्योति बिंदु बन करके निराकारी संकल्प में टिक जाए, मैं आत्मा ज्योति। तेरा भी संकल्प है, मेरा भी संकल्प है, जो तेरा संकल्प तो मेरा संकल्प, तो मन बना भव हुआ या नहीं हुआ? हो गया। सारा मनुष्य आत्मा है, जो टुंडे टुंडे मतिर भिन्ना है, सबके अंदर अलग अलग जन्म जन्मांतर संकल्प चलते रहे या एक जैसे संकल्प चले थे जन्म में, अलग अलग संपन्न अलग अलग संकल्प चले, तो वो संकल्प सारे ही पुरोहित तो हो जाए, एक के संकल्प है। कौन सा संकल्प? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। सबके संकल्प एक संकल्प में समा जाएंगे तो सब एक हो गए, सारे बुद्ध
जो 63 जन्म में बुदबुदाते रहे, ये करेंगे वो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, अलग अलग हो गए ना, वो अंत में महामृत्यु के समय सारे संकल्प में समा जाते, जो बाप का संकल्प वो बच्चों के संकल्प, वो बाप हमको सिखला रहे राजयोग, जिस राजयोग से हम जन्म जन्मांतर के राजाएं बन सकते, जो राजाई का बरसात, जो राजाई की पढ़ाई, एक के अलावा और कोई पढ़ा ही नहीं सकता, राजाई का बरसात कोई देख ही नहीं सकता, एक के अलावा खुद राजा होगा वो दूसरों को राजा का वर्षा देगा, खुद ही राजा ही नहीं, राजा नहीं होगा तो बच्चों को राजा का वर्षा देगा देगा नहीं देगा। तो निराकार आत्मा की बात नहीं है, वो निराकार आत्मा तो सदगुरु है, क्या है सत गुरु, सच्चा गुरु, वो पढ़ाई पढ़ाने वाला प्रैक्टिकल है या थ्योरेटिकल पढ़ाई पढ़ाता है, खुद याद में रहता है, खुद वर्षा देता है, खुद प्रैक्टिकल में वर्षा लेता है सुख का, जब लेता ही नहीं तो देगा कैसे, तो जो खुद पुरुषार्थ करके इंद्रिय जीते जगत जीत बनने का वर्षा देता है, वो दूसरों को इंद्र जीत बनने का वर्षा दे सकता है, नहीं तो नहीं दे सकता, सबको बोल देते हैं कोई भी धर्म वाला हो तो वो लोग बाप को याद करो, वो खुद बाप कहते हैं मुझे याद करो, मुझे कहते हो मैं पतित पावन हूं, तो मैं पतित पावन हूं तो पतित से पावन बनने की युक्ति बताऊंगा ना, क्या युक्ति बताऊंगा, अरे पावन देवता है जो पतित कैसे बने, संघ के हैं जैसे पतित बने, संघ दो अन्न दोस्ते पतित बने, तो बाप आकर के स्ट्रिक्टली ये पढ़ाई पढ़ाते, क्या क्या पढ़ाई है, एक उनकी से क्या भगवंत है उसको पहचानो और उसे बुद्धि से याद करो, कैसे याद करें, रसगुल्ला खाया होगा तो याद आएगा या खाया ही नहीं होगा तो याद आएगा, खाएगा तो याद आए, एक बार खाएगा तो बार बार आए, तो यही है वो बाप आकर के कहते हैं मुझे याद करो, कैसे याद करो, संघ के रंग में आ देंगे तो याद आए, सबसे जाति संघ का रंग कौन से अंग का लगता है, हाथ का, तो दृष्टि से सृष्टि सुधरती है ये गाय, लेकिन किसकी दृष्टि से सृष्टि सुधरती है, एक बाप जिसकी दृष्टि इस दुनिया में किसी पर न डूबे, किसी के प्रभाव में ना आए, ऐसा बाप मनुष्य रूप में, जो होगा वो ही हमारी दृष्टि को ऐसा पावन बना सकता है संघ के रंग में। तो ऐसे नहीं है कि कोई भी ऐसा गहरा लक्ष्य ठहरा आकर हमारी दृष्टि का संग ले संग करे तो हम पति से पावन बन जाए। नहीं, उस एक को पहचान। कौन है जो पहले पहले इन पुरुषार्थी मनुष्यों के बीच में पुरुषार्थी मनुष्य शक्ति में पहले पहले संग दोष और अनुदोष से अलग हो जाता है। जैसे वृक्ष होता है ना, वृक्ष में जो फल पकता है तो फल के अंदर जो बीज होता है वो सारे वृक्ष से पहले पहले डिटैच होता है ना, होता है या नहीं होता है? होता है। तो वो जो पहले पहले डिटैच होने वाला बीज है वो किसान लोग जानते हैं कि कोई भी फसल है उसमें पहले पौधे में जो पहला फल आता है उसका बीज होता है उसे ही होना चाहिए, उससे बीज तैयार करेंगे तो लंबे समय तक वो फसल करेंगे। ऐसे मनुष्य शक्ति का तो मनुष्य शक्ति में जो आत्मा रूपी बीज पहले पहले इस मनुष्य शक्ति की रूपी झाड़ से डिटैच हो जाता है और डिटैच होने की निशानी भी बताइए। क्या निशानी बताइए? धर्म पिताओं के चेहरे को ध्यान से देखो, क्राइस्ट को देखो, बुद्ध को देखो, गुरु नानक को देखो, उनको चेहरे के देखने से क्या लगता है इस दुनिया के वासी हैं या गांव किसी और दुनिया से आए? इस दुनिया से उनकी दृष्टि डिटैच हुई दिखाई देती है? नहीं, डिटैच हुई दिखाई। ऐसे ही हमारे भारत के शास्त्रों में एक मूर्ति है, नग्न मूर्ति, जिसे हिंदुओं में शंकर और जैनियों में तीर्थंकर कहा जाता है। नंगी दिखाई जाती है, माने देह रूपी वस्त्र की याद नहीं है, निराकारी स्टेज में दिखाती है, गर्म पिताओं से भी जाती निराकारी स्टेज। वो अव्यक्त स्टेज ही बाप को प्रत्यक्ष करेगी। सारी दुनिया पहचानेगी ब्रह्मा कुमारियों का बाप ने इस्लामी बौद्धियों क्रिश्चियन शादी का बाप ने हम सबका बाप इस शक्ति पर आ गए। वो है ऊंचे से ऊंचा भगवान, कहते हैं कि ऐसे याद करो, मुझे कहते हो मैं कभी पावन तो युक्ति बताऊंगा ना, आए करके युक्ति बताऊंगा। क्या आए करके माने तुम्हारे सन्मुख आऊंगा या नहीं आऊंगा? सन्मुख आकर के युक्ति बताते हैं। क्या युक्ति बताते हैं? मेरे को याद करो, जानते हैं किसी से लड़ाई हो जाती है, किसी से ईर्ष्या द्वेष होता है तो उसकी कोई याद करता है? रावण को कोई याद करता है? नहीं, तो याद कब आती है? याद आती है सुख के आधार पर। स्त्री पति का सुख लेती है जीवन भर, पति की इंद्रियों से सुख लेती है, तो मृत्यु के समय कौन याद आता है? पति ही याद आ जाता है, तो अंत में सो गति हो जाती। यही बात है, जिसका प्रैक्टिकल में संग करेंगे उसकी याद भी जरूर रहेगी, और वो प्रैक्टिकल संग इंद्रियों के द्वारा ही होता है, और इंद्रियों में भी मुख्य है आंखें। क्या मुख्य? कौन सा संबंध? इंद्रियों का संबंध। इंद्रियों में भी ज्ञान इंद्रिय, और ज्ञान इंद्रियों में भी आंख। जो कहते हैं क्या दृष्टि से शक्ति सुधरती है, तो मैं युक्ति बताऊंगा आगे करके। उस युक्ति में भी धारण करने में कोई सब 2552 पूरे ही बन जाएंगे। सब बन जाएंगे रामधर्म की यात्राएं होंगी, बौद्धिक क्रिश्चियन धर्म की यात्राएं होंगी, वो सतयुग में दृष्टि का सुख लेकर के सृष्टि बढ़ाएंगी। क्या बढ़ाती है? बढ़ाती है। तो उन्हें अनुभव ही नहीं है इस बात का कि वो आपका रसगुल्ला कैसा होता है। याद आएगा उनको? याद नहीं, उनको उसमें लुत्फ भी नहीं आता, मजा ही नहीं आता, तो वो तुम आपको नहीं मानते। क्या ये दृष्टि का संग करने से कोई पति तो बन सकता है? नहीं मानेगी, न मानेगी, न भगवान को पहचानेगी टाइम पर, और पहचानी भी नहीं वो ज्ञान इंद्रियों का सुख ले भी नहीं सकती है। उनसे सुख में मस्त रहेंगे कर्म इंद्रियों के सुख में मस्त रहेंगे। उन्हें कर्म इंद्रियों का ही सुख चाहिए। जैसे गैस का गुब्बारा देखा है ना, क्या देखा? गैस के गुब्बारे में जितनी गैस भरते रहो तो ऊंचा उठेगा, मजा आएगा, ऊंची स्टेज में जाएगा, उसमें गैस खत्म हो जाएगी तो क्या हुआ? नीचे गिर गया। ऐसे ही यहां हाल है ब्राह्मणों का। जो ब्राह्मणों का दुख इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आदि धर्मों में कन्वर्ट होने वाला है या कन्वर्ट होकर के रहे हैं, वो आत्माएं ज्ञान इंद्रियों के सुख में मस्त रहेंगी, या देह की जो भ्रष्ट इंद्रियां है कर्म इंद्रियां उनके सुख में मस्त रहेंगी? बस यही कारण है जो गीता में कहा है, चातुर्वर्ण्यम माया सत्यम गुण कर्म स्वभाव है, मेरे द्वारा संगम युग में चार वर्णों की रचना की जाती है, चार वर्ण की आत्माएं हैं। पक्का ब्राह्मण सो देवी देवता 16 का लक्षण। कच्चे ब्राह्मण इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन आदि धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, विशेष बनते हैं, वैश्याल बन जाते हैं, और उसे भी नीचे शुद्ध कर्म करने वाले निचले धर्म वाले जो मुख्य चार धर्म हैं उनको भी नीचे आने में सहयोगी जप का काम क्या होता है? शुद्ध कर्म करते। आजकल तो शहर शहर में गटर लाइन बन पड़ी है, वो शुद्ध वो काम नहीं कर रही। क्या तो काम अभी बदल गया? क्योंकि तो भगवान के आने के टाइम पर दुनिया बदलने लगती है, इसलिए वहां भी बदलाव हो गया बाहर की दुनिया में। नहीं तो पहले जो शूद्र होते थे वो सर के ऊपर टोकरी रख करके गलियों गलियों में घूमते थे, गंदगी साफ करके जाते थे। एक एक घर में जाकर के लैट्रिन साफ करते थे। तो शुद्ध कर्म हुआ ना, क्या काम किया? गंदगी साफ की ना। इसे कहा जाता है वाममार्गी धर्म, बाया हाथ और दाया हाथ कौन सा अच्छा होता है? दाया हाथ दान धर्म किया जाता है और बाया हाथ से गंदगी साफ की जाती है। तो ये वाममार्गी धर्म है मनुष्य शक्ति वृक्ष के कौन कौन से? इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन और उनके सहयोगी धर्म जो बाद में उनका सहयोग करते हैं, रिफॉर्मेंस करते हैं। ये जो वाम मार्गी धर्म है ये विचार फैला करके देव आत्माओं में जो संग के रंग से गंदगी बढ़ जाती है उस गंदगी की अति कर देते हैं और अति का क्या हो जाता है? अंत हो जाता है। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में चार वर्णों की रचना हो रही है। समझा? कोई वाइब्रेशन का सुख लेने वाले हैं, भले अंत में आवेंगे। क्या? एकदम पुरुषार्थी जीवन के अंत में ही क्यों नहीं? जैसे लक्ष्मी लास्ट सो फास्ट चले जाते। कौन से संग के रंग के आधार पर फास्ट चले गए? कर्मेंद्रियों का सुख लिया ब्राह्मण जीवन में, ज्ञानेंद्रियों का सुख लिया ब्राह्मण जीवन में, या कोई और सुख लिया है? क्या सुख? वाइब्रेशन का सुख लिया दूर रहकर। कर्मेंद्रियों से भी ज्यादा तीखी होती है ज्ञानेंद्रियों, ज्ञानेंद्रियों से भी ज्यादा तीखा होता है वाइब्रेशन। वाइब्रेशन को फैलाने के लिए इंद्रियों की दरकार नहीं है, इसलिए भगवान बाप आकर के सिखाते हैं कि ऐसी ऊंची स्टेज धारण करो जो ऊंचे से ऊंचा संग का रंग धारण कर ले सको और ऊंचे से ऊंचा पद प्राप्त कर सको। तो युक्ति बताता हूं, जो सभी ऐसे नहीं बन जाते। कैसे? वाइब्रेशन का सुख लेने वाले सभी बन जाएंगे? नहीं बनेंगे। कोई ज्ञानेंद्रियों के सुख में मस्त हो जाते हैं, कोई कर्मेंद्रियों के सुख में मस्त हो रहे हैं, विशेष इंद्रियों का सुख लेते हैं ब्राह्मण जीवन में, और कोई ग्रस्त इंद्रियों का सुख लेते हैं ब्राह्मण जीवन में। तो फाउंडेशन अभी पड़ रहा है, तो समझ लो कि सभी एक जैसे 2552 बन जाएंगे, एक जैसे बनेंगे नहीं ना। तो देवता धर्म में जाएंगे, कोई देवताओं से भी ऊंचे बनते हैं। सतयुग के 16 कला संपूर्ण देवताओं को भी जन्म देने वाले बनते हैं। त्रेता में चले जाएंगे, चंद्रवंशी बनेंगे, कोई द्वैतवादी युग में आवेंगे। विष्णु का जो विराट स्वरूप दिखाते हैं उसमें 4 वर्ण दिखाए गए, मुख में देवताओं को दिखाते हैं, धरा और बाह में क्षत्रियों को दिखाते हैं, त्रेतायु, और कमर से नीचे के हिस्से में द्वैतवादी युग आते हैं, 2 टांगों वाले, 2 धर्म, 2 राज्य, 2 भाषाएं, 2 कुल, 2 मतें। तो आपस में लड़ना झगड़ना होगा या नहीं होगा? होता है, तो दिखाया।
जयपुर
का फाउंडेशन डालने वालों की ये हालत हो रही है। क्या ये राम की सेना आपस में ही लड़ झगड़ करके दूर दूर हो जाते हैं बाप से? बाप का बरसा लेने से बिछुड़ जाते हैं। अगर सभी पावन बन जाने तो फिर क्या होगा? सभी पावन बन जाने 500-700 करोड़ तो कहां रहेंगे? सतयुग में इतने रह सकेंगे? हैं? वो तो छोटी दुनिया होगी। तो कहां रहते हैं? सभी पावन तो बनते नहीं, तो कहां रहते हैं? परमधाम में पड़े।